ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम् अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम अध्याय चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 26 एवं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानं शयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः। हे द्विज ब्रह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं, संतुष्ट नहीं था। हे द्विज ब्राह्मणों, इसका मतलब क्या है? सुत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषियों को बताते हैं, यद्यपि वे का मतलब श्री व्यासदेव। तात्पर्य, श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। तो बात यही है कि व्यासदेव का मन संतुष्ट नहीं है। व्यासदेव स्वयं इसके पहले महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता में लिखे, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते परम, कि ब्रह्मभूत व्यक्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति का मुख्य लक्षण है कि वे प्रसन्न आत्मा, पूरी तरह प्रसन्न रहते। और व्यासदेव चतुर्वेद का संबंध संपादन किया, सब पुराण शास्त्र भिन्न भिन्न शिष्यों के द्वारा संपादन किए हैं, और महाभारत स्वयं रचना की और वेदांत सूत्रों स्वयं रचना की, तो फिर भी इनके हृदय में संतुष्टि नहीं थी। तो व्यासदेव स्वयं समझ नहीं पाए, क्यों मैं व्यास हूँ और ये व्यास अवतार का उद्देश्य है वेद शास्त्र जनसाधारण के लिए प्रस्तुत करना, जिससे जनता लोग संपूर्ण कल्याण मिलेंगे। संपूर्ण का मतलब भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण। तो व्यासदेव अपने विचार में सब कुछ किया है जिसलिए उनका अवतरण अवतार का उद्देश्य था, मतलब उनका अवतार का उद्देश्य था वैदिक शास्त्र प्रस्तुत करना जनसाधारण का श्रेय के लिए। ये श्रेयसी शब्द इस श्लोक में आता है, तो फिर भी संतोष नहीं थे। तो यही स्थिति में इनके गुरु नारद मुनि आए थे और व्यास को बताया कि सही है कि आप शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थान में भगवान कृष्णा का गुणगान किया है, परंतु पूरी तरह स्पष्ट रूप से आप भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक मानस गोचर अधोक्षज दिव्य गुणों का प्रचार नहीं किया। अर्थात शास्त्र में जैसे महाभारत में भगवद गीता है जिसमें भक्ति कृष्ण भक्ति भक्त्या माम अभिजानाति भक्ति का गुणगान है कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ मानव धर्म, मानव के लिए सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है भक्ति, वही उल्लेख है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है और पद्म पुराण में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कृष्ण भक्ति के बारे में, परंतु वो सभी शास्त्रों में कृष्ण और कृष्ण भक्ति का कीर्तन के साथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष का गुणबान गान भी है और अलग अलग देवताओं की स्तुति भी होती है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बताया क्योंकि कि श्री कृष्ण भगवान ही है, वे देवताओं से आराध्य है और इनकी भक्ति करना सभी जीव का चरम धर्म है और वास्तव में एक ही धर्म है। तो वो ही संदेश परिपूर्ण स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया, इसलिए व्यासदेव का विषाद है, प्रसन्नता नहीं है, विषाद है। तो भगवान व्यासदेव वो सब वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जिससे जनसाधारण का कल्याण होगा। ये वेद शास्त्र प्रस्तुत करने के लिए वे विशेष शक्ति संचारित थे, भिन्न भिन्न अवतार की विशेष विशेष उद्देश्य है जिसलिए वे विशेष विशेष रूप से शक्ति संचारित होते हैं। और व्यासदेव का अवतार का उद्देश्य है वैदिक शास्त्र प्रस्तुत करना। तो फिर भी नाथो शद्रधयम, उनका मन संतोष नहीं था। उसका कारण क्या था? तो वास्तव में तो कैसे सब जीव की शुद्धि होगी उसके बारे में स्पष्ट नहीं, लेकिन स्वयं सब जीव का जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष भिन्न भिन्न देवताओं की आराध्य करना भिन्न भिन्न प्रकार के योग का वर्णन करने में ऐसा लगता है कि व्यासदेव का ध्यान व्यासदेव का उद्देश्य तो खो गया। तो अपने मन में कि ये सब वैदैश्च सर्वैरहमेवा वेद्यः, कि ये सब वैदिक शास्त्रों का मूल उद्देश्य है सभी बद्ध जीव को धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लाना। तो ऐसा लगता है कि भगवान व्यासदेव भी वो ही संदेश भूले, और इस उसी प्रकार तो व्यासदेव तो मोहित जैसे हो गया है। व्यासदेव तो भगवत अवतार है तो मोहित नहीं होते, परंतु ऐसे लगते क्योंकि विशेष रूप से कि भगवत धर्म धर्म ही है, तो किसी शास्त्र में उसी बात जो सभी बात के सारांश है, तो किसी विशेष शास्त्र में वो संदेश तो प्रदान नहीं किया। इसलिए इसके पश्चात नारद मुनि से मार्गदर्शन मिलके व्यासदेव श्रीमद् भागवत भगवत पुराण रचना की, जिसमें शुरुआत में लेख है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पहला श्लोक में श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित है। जन्मादिस्य यथोन्वयादित रथश्चाथे स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र श्रीसागमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण सत्यं परं है, जिनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे जन्माद्यस्य यतः, तो एक शब्द का व्याख्या करना तो एक युग, कम से कम एक युग लगेगा। तो अभी खाली बताता हूँ, पूरा व्याख्या करने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो पहला श्लोक में कि श्री कृष्ण सर्वाराध्य है, तो वो विषय स्थापन किए हैं व्यास श्रीमद् भागवत में। और दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कैतव अत्र, सब कुछ जो मैं पहले लिखा था अनन्य अनन्य शास्त्रों में, वो सब कैतव धर्म है। यही वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, यही वेद शास्त्र का वास्तविक वस्तु है। और सब कुछ जो पहले लिखा था उसका उद्देश्य है इसी स्तर पर जीवों को पहचाना। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, सभी शास्त्र में हरि भगवान का गुणगान है। परंतु बहुत शास्त्रों में कि हरि का गुणगान जो है वो परोक्ष रूप होते हैं, और इसलिए मोहित जीवों उसका उद्देश्य समझ नहीं पाते। तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतियता यह आत्मा सुप्रसीदति। व्यासदेव का मन नहीं दुखता, क्यों? क्योंकि यही संदेश कि सवाई पुंसांग परो धर्म, हर एक जीव के लिए परम धर्म, ऐसा नहीं है कि जतो मत ततो पत, जितने भी मत इतना भी पथ है, तो वैसे नहीं है। सब जीव के लिए एक पथ है, एक वास्तविक पथ है, एक धर्म है। वो धर्म है अधोक्षज मानस के अगोचर भगवान की भक्ति सेवा करना है, वो ही परम धर्म। और वो धर्म तो अहैतुक्य प्रतिहता, तो निस्वार्थ और सदैव होना चाहिए। उसी प्रकार जीव पूरी तरह प्रसन्न होते हैं। तो व्यासदेव तो अभी तक श्रीमद् भागवत वो ही शास्त्र रचना ना की, इसलिए इनके हृदय में विषाद है, दुख है। तो हे शास्त्र में भिन्न भिन्न शास्त्रों में भगवान कृष्ण का गुणगान, परंतु अति स्पष्ट रूप में कि कृष्ण ही भगवान और हर एक जीव का मूल धर्म है, एक ही वास्तविक धर्म है वो हरि भगवान की सेवा करना। तो वो विषय अति स्पष्ट रूप में किसी शास्त्र में श्रीमद् भागवत के अलावा जो अभी तक रचना नहीं हुए, तो किसी शास्त्र में वो संदेश तो पूरी स्पष्ट रूप से बताता नहीं हुआ। और कि कृष्ण भगवान निर्गुण है, कृष्ण भगवान त्रिगुण के अतीत है, तो ये सब संदेश प्रचार नहीं किया। इसलिए नारद मुनि का विचार था न यद्वचस चित्रपदो हरेर यशो, वो श्लोक क्या है, जगत पवित्र क्या है, याद है, हाँ, यद्वाय संतीर्थम शांति मानस न यत्र हंसा न यत्र हंसा यत्र, मुझे भी याद नहीं है। ओ नारद मुनि बताए कि वो सभी वाचन जिसमें अति स्पष्ट रूप में भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं है वो वायसम तीर्थम है, यद वचस चित्रपट, जितने भी अलंकारिक रूप में रचित है चित्रपटम, यदि उसमें हरि यश हरे हर यश उसमें हरि यश का वर्णन नहीं है तो वो वायसम तीर्थम है। उसका मतलब तीर्थ, तीर्थ का मतलब वो पवित्र स्थान है। तो ये बात तो क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक होते हैं, कटाक्ष, कटाक्ष वैसे कि वो तीर्थ है कुआ के लिए, वो सब कचरा कचरा के पास जाते हैं, नहीं क्वा 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 क्वा, तो ऐसे पक्षी तो पुण्यवान नहीं है, तो वो बहुत निम्न जन्म है नहीं क्वा का। तो आई तो नारद मुनि ऐसे ही दूसरे वेद शास्त्र भी इसी प्रकार निंदा करते, निंदा मतलब निंदा नहीं लेकिन मंतव्य करते कि श्रीमद् भागवत की तुलना में वो सब निम्न है, निकृष्ट है। और एक भी गलती व्यासदेव की है, नारद मुनि कहते हैं कि शरीर आत्मा मानसा, तो ऐसे शास्त्र प्रदान किया जिससे सामान्य लोग की माया कि मैं शरीर हूँ देहात्मा बुद्धि या मैं मन हूँ, वो मोह का पोषण किया। जैसे शास्त्र में महाभारत में बहुत स्थान है और अलग अलग पुराण शास्त्र में बहुत ऐसे प्रमाण है कि यदि अलग अलग तीर्थ में अलग अलग सरोवर में स्नान करना है तो ऐसे फायदा मिलेगा, धन जन सुंदरी मिलेगा और सब पूर्वकृत कर्मों का फल से मुक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार सामान्य कर्म और ज्ञान का पोषण करने से श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत की रचना के पहले श्रील व्यासदेव देहात्म बुद्धि कि मैं शरीर हूँ वही धारणा भूल धारणा और कि मैं मन हूँ वो भूल धारणा भी पोषण किया है। और इसी प्रकार उनका उद्देश्य धीरे धीरे बद्ध जीवों कृष्णोन्मुख कृष्ण विरोधी जन या कृष्ण बाह्यमुख जन तो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लाना उनका उद्देश्य था। तो फिर भी वो देहात्म बुद्धि और मन ही आत्मा वो ही बुद्धि पोषण करने से और भी बाध कृष्ण भक्ति पथ में आने के बाध सृष्टि की ये नारद मुनि की आपत्ति है। क्योंकि शास्त्र में ऐसे बहुत सलाह है तो वो ऐसे व्रत पालन करो ऐसे व्रत पालन करने से उसी प्रकार फल मिलेगा। यदि उसी दिन में उपवास करना है तो पुत्रोत्पत्ति होगी या चंद्रवास मिलेगा या वो सब अंतर आए सब विघ्न तो नाश हो जाएगा। परंतु वास्तविक विचार है कि कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ तुच्छ है। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्र जपस्तपः प्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम ये उदाहरण है कि वो जैसे विवाह का दिन एक व्यक्ति का विवाह का दिन लड़का और लड़की जो विवाहित होंगे दोनों का पूरा अलंकरण है आभरण देना है नहीं तो सिल्क साड़ी पहनाना है और मेहंदी लगाना है और ऐसे आभरण देना है ऐसा होता है नहीं तो यदि शव को ऐसा आभरण देना है तो वो शोभा नहीं देखते तो बहुत सुंदर आभरण और पोशाक होते हुए भी तो शव को ऐसे आभरण देना तो विचित्र लगता है नहीं क्या फायदा है शव को सुंदर साड़ी पहनाना हार सोना हार देना तो उससे क्या होता है तो फिर भी वो जितने भी दूर से सुंदर देख सकते लेकिन थोड़ा नजदीक आने से तो खराब लगता है। तो इसी प्रकार तो शास्त्र में बहुत अलंकारित भाषा से कर्म ज्ञान और योग का वर्णन होते हुए भी वो सब क्या है वो शव का वेशभूषण इत्यादि अलंकृत करने जैसा है। अलंकृत भाषा से कर्म ज्ञान और योग का वर्णन है तो वो क्या है शव जैसे अलंकृत करना है। क्योंकि कर्म ज्ञान और योग में कृष्ण भक्ति का प्राण नहीं है वो प्राण नहीं है जीव के लिए। जीव का धर्म है कृष्ण भक्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष का कीर्तन करने से व्यासदेव ने भौतिक सांसारिक जीवन की प्रशंसा किया, परंतु सच है कि सांसारिक जीवन क्या है? दुखमय, पूरा जगत दुखालय शाश्वत दुखमय है। परंतु शास्त्र में व्यासदेव वर्णन किए तो कैसे सुखी होना भौतिक जगत में, तो ये सब क्या है? ये सब उल्टी कथा है। कैसे सुखी होना? तो ऐसे हम आपको बहुत सुंदर वेशभूषण देंगे, आभरण देंगे, और जो भी खाना लेना चाहते हो हम देंगे, और सोना थाला में हम देंगे। वो यदि हम वैसे कहेंगे तो आप क्या ग्रहण करेंगे? नहीं तो खाली एक शर्त है, तो हर एक मिनट हम एक उसको क्या बोलते हैं, वो लाठी लेके तो तुमको मारा दोगे हर एक मिनट में। तो सोना थाला से मेरे पकौड़ी हलवा पूरी वो सब कुछ ठीक है, थोड़ा पूरी सब्जी लाता स्वाद तो ये है भौतिक संसार, ऐसे होते सुख है, लेकिन सुख से दुख बहुत ज्यादा होते। तो व्यासदेव केवल और विशेषकर की भौतिक जगत सुखमय है ऐसे ही संदेश दिया, तो वो बड़ा बड़ी गलती थी व्यासदेव का। नारद मुनि कहते इसलिए नारद मुनि का विचार था कि वो जैसे वो डॉक्टर, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं बोलते हैं क्या वो मुझे ये वो डॉक्टर सब वो देखते हैं टेस्ट लेते हैं, वो हार्ट प्रॉब्लम है हार्ट प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलते हैं तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ऐसा खाना लेना है, आई ओ दूसरे क्या क्या लेना है, सनफ्लावर ऑयल है नहीं हार्ट प्रॉब्लम में ऐसा सनफ्लावर और मटन वो निषेध है नहीं हार्ट प्रॉब्लम में, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, और बहुत भारी भोजन वो मना है, तो हल्की खाना लेना चाहिए। तो यदि पेशेंट कहते कि मुझे वो सब चीज़ लेना अच्छा लगता है, तो डॉक्टर तो नहीं ठीक है ठीक है तो अच्छा लगता है तो जो भी लेना चाहते हो तो ले लो, तो अगर डॉक्टर ऐसे बोलते तो वो सही डॉक्टर नहीं है, वो बदमाश है। तो डॉक्टर का कर्तव्य है पेशेंट को बताना जो पेशेंट के लिए अनुकूल होगा, ऐसे जो पेशेंट सुनना चाहते हैं तो ठीक है, तो हार्ट प्रॉब्लम है तो फिर भी मांस मटन और चिकन विस्की सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहना चाहिए, वो सब बंद करो। वो पेशेंट जो सुनना चाहते हैं डॉक्टर का वैसे बताना नहीं, जिससे पेशेंट का हित होगा वैसे बताना चाहिए। वो नारद मुनि व्यासदेव को बताए कि तुम वैसे बदमाश जैसे डॉक्टर हो, क्योंकि जो सब जो जनसाधारण सुनना चाहते हैं तो ऐसे लगते हैं, और जिसका जिससे उनका वास्तविक कल्याण होगा जिसका सुनना चाहिए तो नहीं बताए। तो अभी देखना चाहिए और वो है श्रीमद् भागवतम। तो और शास्त्र में वो है सुख प्राप्ति, इंद्रिय सुख प्राप्ति का निर्देश है, और उसके अलावा ब्रह्मलीन होना, निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान, वो ही संदेश है, वो सब है। तो दोनों से इंद्रिय तर्पण करने से और ब्रह्मलीन होना का प्रयास करना, दोनों में कुछ भी वास्तविक कल्याण नहीं होते जीवों का, क्योंकि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो ही मूल संदेश है। तो इसलिए व्यासदेव इतने सारे शास्त्र संपादन करना और रचना करना, तो वो बहुत बड़ा प्रयास करके भी तो जगत के लिए विशेष उपकार नहीं किया, उसके विपरीत किया। तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे शास्त्र का पाठ नहीं करेंगे, परंतु हम श्रीमद् भागवत का परिप्रेक्ष्य के अनुसार पाठ करेंगे, नहीं तो भिन्न भिन्न शास्त्र पाठ करने से तो मन तो विचलित हो जाएगा, क्योंकि ओ ये शास्त्र में तो स्कंद की पूजा करने, ये उसमें देवी की पूजा करना, और इसमें शिव की पूजा, इसमें राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, तो सब कुछ शास्त्र चक्षु श्रीमद् भागवत का परिप्रेक्ष्य से यही शास्त्र, सभी शास्त्र का पाठ करना चाहिए। तो कैसे हम मालूम सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ साध्य वो है जिससे ययात्मा सुप्रसिद्धति, जिसमें आत्मा तो पूरी तरह प्रसन्न होते हैं, और वो संभव है कैसे? सवाय पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध, और कोई दूसरा उपाय से संभव नहीं है। शिव की पूजा से, माता जी की पूजा से, किसी देवता की पूजा नहीं करना नास्तिक से, हृदय पूरी तरह प्रसन्न नहीं होता। परंतु वो पूरी प्रसन्नता वो केवल वैदिक अनुष्ठानों पालन करने से तो नहीं होते हैं। जैसे वेद का कर्मकांड, यज्ञ और देवता पूजा से क्या होता है? स्वर्ग जाना। परंतु स्वर्ग के बारे में भगवान, स्वर्गवास के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद्गीता में? तैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्गलोक में विशाल सुख प्राप्त होते हैं, परंतु क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ते। ये पुण्य क्षीण होने के पश्चात मर्त्य लोक वापस आना पड़ते हैं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्न गतागतम काम काम लभन्ते। भौतिक कामना से जो त्रयी धर्म वैदिक कर्मकांड धर्म पालन करते तो स्वर्ग जाते वापस आते, फिर ऊपर जाते वापस आते, ऊपर जाते वापस आते, और पूरी प्रसन्नता नहीं मिलते। पूरी प्रसन्नता होते है श्री कृष्ण की अहैतु की अप्रतिहता भक्ति में। तो क्यों व्यासदेव ऐसा प्रसन्न नहीं थे, विषन्न? तो वो भी भगवान कृष्ण की दया है। कभी कभी भक्त लोग हमारे पास आते बोलते कि भक्ति करता हूँ लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, जैसे पहले प्रसन्न था भक्ति में, अभी इतने सा नहीं, तो ऐसे ही महसूस करना भगवान कृष्ण की दया है, जिससे भक्तों आत्मा अनुसंधान कर सकते मन में क्या है उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों ऐसे होते हैं? मन में क्या है? कुछ इंद्रिय तर्पण की इच्छा है क्या? हाँ, स्वार्थ के लिए कुछ इच्छा है? पूरी तरह अहितु की अप्रतिहता भाव है कि नहीं मेरा मन में? तो यदि भक्ति पथ पर हम कभी कभी पूरा प्रसन्न नहीं होते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो कृष्ण भगवान की कृपा है, जिससे हम आत्मा परीक्षा कर सकते हैं और सब अनर्थ जो है मन में वो सब पहचान करके निकाल देंगे। मैं संक्षेप में कहता हूँ, तो भगवान की भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, त्रिगुणातीत भक्ति में, भक्ति सामान्यतः हम भक्ति कहते हैं कि, लेकिन भक्ति सात्विक हो सकते, राजसिक हो सकते, तामसिक भी हो सकते, लेकिन भक्ति शुद्ध भक्ति है त्रिगुण के अतीत, ऐसे होने चाहिए, त्रिगुण के अतीत भक्ति होने चाहिए। और त्रिगुण अतीत भक्ति में हम स्वयं अनुभव करते तो कैसे हम संतुष्ट है? राजा विद्या राजा गुह्यम पवित्र मेदमुतम प्रत्यक्ष आगमन धर्मम सुसुखम कर्तन व्यय। हम स्वयं अनुभव करते तो कैसे हम सुखी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में? ये राजा विद्या है, ये विद्या तो खाली पुस्तक में लिखी हुई विद्या नहीं है, हम स्वयं अनुभव कर सकते तो कैसे भक्ति करने से हम पूरी प्रसन्नता मिलती है, और उसके बिना सब कुछ निरार्थ है। शुद्ध कृष्ण भक्ति सब जीव का मूल अर्थ है, और उसके अलावा सब कुछ जो है सब कुछ निरार्थ है। तो यदि हम वो कृष्ण भक्ति में पूरी स्थित नहीं है तो हम पूरा प्रसन्न नहीं हो सकते। सब जीव और सब प्रयास सब कार्य कलापन करते किसलिए? जिससे वो सुख मिलेगा। तो वास्तविक सुख कैसे मिलते? कृष्ण भक्ति में, अहितु की अप्रतिहता। परंतु वो भक्ति तो त्रिगुण के अतीत होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, अन्याभिलाषित शून्य होना चाहिए। तो यही सब वाणी समझने के लिए हमें नारद मुनि जैसे ऋषि मुनि शुद्ध भक्त से उपदेश लेना चाहिए। यदि हम सोचते कि हम स्वयं शास्त्र अध्ययन करेंगे और स्वयं का प्रयास से हम भक्ति मिलेंगे, वो तो संभव नहीं है। व्यास जो भगवत अवतार है, क्यों वो सामान्य जीव जैसे विषन्न हुए? यही भगवान की लीला है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम जो वास्तव में बद्ध जीव है, हम जो व्यासदेव के स्तर से बहुत 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 निम्न है, तो हमारे लिए गुरु के चरण आश्रय में आना चाहिए, क्योंकि यदि व्यास स्वयं तो नारद मुनि का उपदेश के बिना समझ नहीं सकते कि क्यों मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है। तो हमारी स्थिति क्या है, हमारे पूरा आवश्यकता है गुरु चरण में आश्रय लेना। और गुरु से हम, गुरु और श्रीमद् भागवत से हम यही तत्व सुनेंगे कि वो सब कर्म ज्ञान योग तो उससे भगवान कृष्ण संतुष्ट नहीं होते, और हम सब जो भगवान कृष्ण के अंश है, ममाई वांश जीवलो के जीव भूत सनातन, तो हम भी संतुष्ट नहीं हो सकते कर्म ज्ञान और योग से। साधि अति माम योग, ये वो सब दूसरा उपाय से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होते, केवल भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते, तो हम भी संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि हम हमारे सब कार्यों से कृष्णार्थे खिल चेष्ट, सब कुछ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, तो हम भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इसलिए कर्म ज्ञान और योग से भगवान संतुष्ट नहीं होते और हम भी संतुष्ट नहीं होते। तो यदि यदि हम अहैतुक की प्रतिहता अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति नहीं करेंगे, तो हम हमारा सुदुर्लभ मानव जन्म अपप्रयोग करते हैं। हम हमारा समय जो है मानव जन्म में समय बहुत कम होते, जन्म होते हैं और कुछ दिन के बाद मृत्यु होते, और बीच में हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति का बल से भगवान कृष्ण की कृपा का बल से हमें भगवान का धाम जानना है। तो यदि हम भक्ति के बिना दूसरा पथ पर जाते हैं तो समय हम नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कर्म ज्ञान योग वो सब हमको सिद्धि नहीं दे सकते। परम सिद्धि है और वास्तविक एक ही सत्य सिद्धि है कृष्ण भक्ति। तो हमें यही सत्य ज्ञान में पूरा आश्वस्त होना चाहिए कि केवल भक्ति भक्ति पथ जो श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत है, तो वो ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो हमें पूरी तरह यही सत्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सोचते कि ओ ठीक है मैं भक्ति करूँगा, इंद्रिय तर्पण वो भी हो सकते हैं, कुछ मायावाद मिश्रित होना वो भी अच्छा है, तो यदि हम थोड़ी सी वो शुद्ध भक्ति पद से भ्रष्ट होते तो पूरा सत्यानाश हो सकते। इसलिए हमारी भक्ति एकानिष्ठा होनी चाहिए। ये बात जो मैं कहता हूँ नारद मुनि के अनुसार, शिल प्रभुपाद की वाणी के अनुसार, शायद आप सभी पुण्यशाली हिंदू के लिए विचित्र ऐसे आप ऐसे लगते, क्योंकि वो सभी हिंदू तो सुनते नहीं जन्म से, तो अलग अलग देवता है, अलग अलग देवता की पूजा करो, और यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो वो भी चलेगा। अच्छा हो यदि कुछ ना कुछ पूजा करेगा और आगे नहीं करेगा तो ठीक है, खाली घर से कहो हम हिंदू है वो तो काफ़ी है बोलना। तो मुसलमान मत हो, क्रिश्चियन मत हो, लेकिन हिंदू हो जाओ बस। कैसे हिंदू हो ना तो खाली मुँह से बोलना, घर से कहो हम हिंदू है तो हिंदू होते, और अगर कुछ भी पूजा पाठ जप तप नहीं करेंगे तो वो ठीक है। भाजपा को वोट दो और घर से कहो हम हिंदू है, ऐसे कहें ना तो हिंदू होते। और हम क्या कहते हैं वो सब बायसम थियोतम है, वो सब निरार्थ है, अनार्थ है। वो सब जीवन का वास्तविक उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति में सब कुछ विघ्न है ऐसे सोचना। इसलिए हम यही वाणी प्रचार करते हैं तो अन्याभिलाषित शून्य भक्ति। और लोग सामान्य लोग ये सब बात सुने तो आश्चर्य लगता है, तो ये क्या बात है, हम तो कभी भी नहीं सुना। अलग अलग स्वामी है, योगी है, गुरु है, साधु है, और अलग अलग बात बोलते हैं, तो वो ही हिंदू धर्म है। और आप लोग बोलते हैं कि केवल कृष्ण की भक्ति करना, क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्योंकि सवाई फुंग संग फरो धर्मो यथो भक्ति अहैतुक के प्रति यथा, यही आत्मसुप्रसिद्ध, यही एक ही राष्ट्र है आत्मा का पूरा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। और ये श्रीमद् भागवत में ये आख्यान में कि व्यास जैसे बारह व्यक्ति भी यदि तोरो से भक्ति से भ्रष्ट होते तो विषाद मिलते, दुख मिलते। शुद्ध निर्मल भक्ति वो ही पथ है और सब निरार्थ है। तो क्यों ऐसा हिंदू धर्म में वो सब होते है, वही पूजा करो, वो पूजा, वो ऐसे करो, वैसे करो? क्योंकि सब लोग तो भौतिक जगत में इंद्रिय तर्पण करना चाहते हैं। और ऐसा है कि यदि हम अलग अलग देवताओं से कुछ सहायता मिल सकते तो अच्छा है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो उद्देश्य पूरी तरह पृथक है। हम कैसे भगवान से हम कुछ सुविधाएं मिलेंगे वो हमारा उद्देश्य नहीं, कैसे कृष्ण भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट होंगे वो ही हमारी एक ही आशा है। और भगवान कृष्ण से हम क्या मिलेंगे, पैसा, स्वास्थ्य, वो सब, वो हमारा विचार नहीं है। विशेषकर आधुनिक युग में प्रगति विकास का नाम है, सब लोग की बहुत आशा है कि विकास से हम प्रसन्न होंगे, परंतु वास्तव में कोई सुखी नहीं है। जितने भी विकास होते इतने सा दुख होते, ऐसा होता है ना? विकास के साथ दुख होते, परंतु माया वैसा ही है कि जानबूझ करके हम देखते हैं कि विकास तथा कथित विकास से दुख की वृद्धि होते, फिर भी हम और भी विकास करना चाहते। जानबूझ करके हम हमारा वास्तविक कल्याण के विपरीत सब कुछ करते हैं। इसको एक शब्द में मूर्खता बोलते, मूर्खता। और जो भक्ति पथ पर है तो भक्ति पथ पर है, परंतु सभी औरों से यही प्रचार होते है नहीं, हाँ पैसा कमाओ और ये सब से बड़ी माया आजकल, लोन ले लो, हाँ वे लोन लोन ले लो और लोन से हम गुलाम बन जाते हैं नहीं, बैंक का गुलाम ऐसा है, बड़ा माया है। इतने सा पैसा मिलता हूँ, खाली एक शर्त है तो पूरी जिंदगी में गुलाम होना पड़ेगा। यही बात है। तो भक्ति जीवन में हमें सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए वो ही करने चाहिए, और हमें मोहित नहीं होना चाहिए कि हाँ भक्ति हम करेंगे और साथ साथ हम ऐसे व्यवस्था करेंगे जिससे हम सुखी रहेंगे भौतिक जगत में, क्योंकि वो तो नहीं होगा। ऐसे सोचने से हम पुनरापी जननम पुनरापी मरणम यही स्थिति में है। गृहस्थों का कुछ व्यवस्था करना चाहिए उनके कुटुंबों के लिए, लेकिन मोहित नहीं होना चाहिए कि हम सुखी होंगे संसारिक जीवन में। संसारिक जीवन तो सुखी हो सकते यदि कृष्ण संसार करो छाड़े आना अच्छा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्म सा, संसार में केंद्र कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण केंद्रित संसार होना चाहिए, वो संसार बंधन नहीं होगा, मोह नहीं होगा। तो कि व्यासदेव अति पूरा स्पष्ट रूप से भक्ति प्रचार नहीं किया और वो व्यास की गलती है, तो वही प्रचार है ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। तो इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे प्रयास भक्ति प्रचार में तो सुस्पष्ट रूप से भागवत प्रचार करना, ऐसे उल्टा सिद्ध वैसे तो नहीं है। भागवत में है जैसे श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों सुस्पष्ट रूप से कुछ समझौता नहीं करके भगवत वाणी का प्रचार करते, तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए, नहीं तो भक्ति का प्रचार का नाम है भक्ति जीवन में हम केवल विघ्न सृष्टि करेंगे। तो कृष्ण भक्ति प्रचार का मतलब कृष्ण भगवान की प्रशंसा करना, कृष्ण कीर्तन करना, तो कुछ समझौता न मानसिक काल्पनिक बातें नहीं लाना। कर्म ज्ञान योग मिश्रित भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ भक्ति करो और सुखी रहो संसार में, हम वैसे प्रचार नहीं करते, नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।